अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप जो मशरक वस्ता में बढ़ते हुए हालात, बदलते हुए हालात देख रहे हैं, लगता यह है कि ये काफ़ी जो आसार क़यामत है ना, वो अब हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर उन लोगों को जो कुरान मजीद को समझ के पढ़ते हों और समझना चाह रहे हों। कुरान मजीद में भी गालिबन कुछ निशानियाँ हैं जो हमें बताती हैं कि बिलखसूस शाम के अंदर यानी सीरिया के अंदर जो बदलते हालात हैं वो किस तरह से हमें जो है एक बड़ी आलमी जंग की तरफ धकेलेंगे। और हमें ये भी वहाँ पे इशारे मिल रहे हैं या मिलते हैं कुरान मजीद से इशारे कि ये कौन सी आर्मगेडन है जो बाइबल के अंदर जिक्र है, आर्मगेडन ये उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही हमारा हाल ये है कि हम यानी यहूदियों की उस नस्ल की तरह हो चुके हैं कि जो सैबत मनाने के लिए एक दिन पहले मछलियां पकड़ लेते थे और कहते थे अगले दिन तो हमने नहीं पकड़ी ना भाई, ये तो हमारे तालाबों में फंस गई हैं, तो खुद ही हमारे पास आ गई। तो हम सूद लेने के लिए, सूद खाने के लिए हम मुख्तलिफ हीले बहानों से हम जुस करते रहते हैं कि किस तरह हम सूद लेते रहे। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे सीरिया के ऊपर। आज से कई साल पहले डॉक्टर इसरार अहमद, जिनकी तंजीम इस्लाम अभी भी माशाल्लाह बड़ा काम कर रही है, उन्होंने कई साल पहले इसके ऊपर कुछ फरमाया। आज मैं आपको वो टेप सुनाता हूँ और फिर हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वॉच डॉक्टर इसरार।
प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ायन 1897 में उन्होंने ये नक्शा दिया दुनिया को, एक सांप उसके गिर्द है और वो इन सब के इलाकों को ये लेकर के ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इसलिए कि 1.5 करोड़ इसराइली दुनिया में है। अभी तो 35 लाख आया है सिर्फ, मौजूदा इसराइल में कितने हैं? 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, अल्लाह कर सकता है। वो कहते हैं सारे इसराइली जो यहूदी अब यहां लाएंगे, उसके लिए हमें रकबा चाहिए, हमें ग्रेटर इसराइल। और ये मैंने जैसा कि अर्ज किया कि हासिल होगा, नंबर एक आर्मगेडॉन, नंबर दो ग्रेटर इसराइल, नंबर तीन डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा एंड कुब्बतुस्सख्रा, मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस्सख्रा। लेकिन ये दोनों टेंपल माउंट पर है, उन्हें अपना थर्ड टेंपल बनाना है। यूं समझिए यहूदियों का खाना काबा तकरीबन 1900 बरस से गिरा पड़ा है। 70 ईस्वी में गिरा दिया था टाइटस रूमी, हमने नहीं गिराया, रूमियों ने जो बुत परस्त थे उन्होंने गिराया था, उस वक्त गिरा पड़ा। अब उन्होंने बनाना है। 67 में उन्हें कब्जा मिल गया। 67 से पहले ईस्ट यरूशलम जो है वो जॉर्डन के पास था। 67 की जंग में जो है इन्होंने जीता है, उसे वापस लिया है और वहां पर वो अब उसे गिराना है। ये है थर्ड आर्मगेडॉन, नंबर एक ग्रेट इसराइल, नंबर टू और डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा एंड कुब्बतुस्सख्रा एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंपल, और नंबर चार वहां लाकर रखेंगे थ्रोन ऑफ डेविड को। ये पता नहीं, शायद पहली मरतबा इलाज सुन रहे हो आप, मुझे भी आज से 2 साल पहले जब पहली मरतबा मैंने पढ़ा मैं हैरान रह गया, ये क्या है? हजरत दाऊद का तख्त कहीं महफूज है? हाँ, ये एक पत्थर था जिस पर हजरत दाऊद को बिठाकर ताजपोशी की गई, उसी पर बिठाकर हजरत सुलेमान की ताजपोशी हुई। फिर जब हजरत सुलेमान ने ये माबद बना दिया, वो माबद में रख दिया गया। उसके बाद किसी भी इसराइली बादशाह की ताजपोशी वहीं पे बैठकर हुई। जब टाइटस रोमी ने 70 ईस्वी में गिरा दिया उनके टेम्पल को, वो पत्थर ले गया, वो पत्थर रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से ब्रिटानिया में आ गया, इंग्लैंड में आ गया। और इंग्लैंड में 14वीं सदी ईस्वी में इस पत्थर को एक कुर्सी की सीट के तौर पर लगाकर ये थ्रोन बना दिया गया। और ये जो उनकी पार्लियामेंट है, वेस्टमिंस्टर, वेस्टमिंस्टर की पार्लियामेंट जो है उसके साथ चर्च है, वेस्टमिंस्टर एबे उसमें लिखा हुआ है। और अब बर्तानिया का किसी बादशाह, कोई जो क्वीन है, ताजपोशी होती उस पत्थर, दैट इज द थ्रोन ऑफ डेविड, वो लाकर रखा जाएगा। ये चार निकाती एजेंडा है जिस पर ज्यूस और जो ईसाइयों में जिनको हम कहते हैं देवकॉन।
जी वेलकम बैक, आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वार को, लेकिन तफसीली तौर पे आपको मैं बताता हूँ अभी के उन्होंने क्या कहा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हाफिज आकिफ सईद हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर हैं तंजीम इस्लामी पाकिस्तान के, और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, पूछते हैं डॉक्टर स्वार क्या कहना चाह रहे हैं आम अकेडमी का। टेक अ ब्रेक।
जब टाइटस रोमी ने सन 70 ईस्वी में गिरा दिया उनके टेम्पल को, वो पत्थर ले गया, वो पत्थर रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से ब्रिटानिया में आ गया, इंग्लैंड में आ गया, और इंग्लैंड में 14वीं सदी ईस्वी में इस पत्थर को एक कुर्सी की सीट के तौर पर लगाकर ये थ्रोन बना दिया गया, और ये जो उनकी पार्लियामेंट है वेस्टमिंस्टर की पार्लियामेंट जो है उसके साथ जो चर्च है वेस्टमिंस्टर एबे उसमें रखा हुआ है। और अब बर्तानिया का किसी बादशाह कोई जो क्वीन है ताजपोशी होती उस पत्थर पर, दैट इज द थ्रोन ऑफ डेविड, वो लाकर रखा जाएगा। ये चार निकाती एजेंडा है जिस पर ज्यूस और जो ईसाइयों में जिनको हम कहते हैं देवकॉन, ये आजकल आप पढ़ते हैं अखबार देवकॉन देव कंजर्वेटिव, ये लोग जो है ये मुत्तफिक हैं। ये चार निकाती एजेंडा, इसीलिए मैंने कहा था कि जो इस सलीबी जंग का मरकजी मार्का है वो वहां होना है, लेकिन वो चाहते हैं कि उससे पहले पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनसे निपट ले, इसलिए कि जब ये गिराएंगे, जब ये बैतुल मक़द्दस के अंदर हमारी मस्जिद अक्सा को गिराएंगे, और जब ये कुबतुल सगर पूरे आलम इस्लाम के अंदर आग लगेगी, उस वक्त जो है इन्होंने जश्न मनाया था 1967 में अपनी फतह का जश्न मनाया पेरिस में, और वहां तकरीर की थी बिनगोरियन ने, बिनगोरियन हुआ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, और उसने ये कहा था हमें किसी अरब ममालिक से कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से है। हालांकि पाकिस्तान एटमिक पावर तो नहीं था उस वक्त, इन्हें पता है हदीस रसूल का कि जब वो आखिरी मरहला आएगा जंगों का तो इसके बाद यहां से फौजें जाएंगी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होकर जंग करेंगे यहूदियों के साथ, वो आखिरी मरहला, वो दूसरा दौर जो आना है, ये पहले दौर की बात मैं कर रहा हूं, दूसरे दौर का एंड आपको बता रहा हूं। और हुजूर ने ये भी बताया कि जब मेहदी आएंगे तो उनकी मदद के लिए ये मशरिक की तरफ से फौजें आएंगी, मशरिक में पाकिस्तान, तो ये तो दर हकीकत सूरह बनी इसराइल में अल्फाज आए हैं फैजा जा वाद उला हुमा बासना अलैकुम इबादल लना उली बासन शदीद फजासु खिलालत दियार, वो तो हमारे अंदर घुस चुके हैं, हमारे घरों में घुस चुके हैं, जब चाहेंगे कर लेंगे, उसके लिए उन्हें कोई बहाना चाहिए बस, ये उनके नक्शे हैं, होगा क्या वो अल्लाह जानता है, हमारा काम क्या है, ये सारी चीजें भी हमें मालूम होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, वी आर वेयर वेयर डू वी स्टैंड वेयर वी आर हेडिंग, जा कहां रहे हैं, ये इंसानियत का जो काफिला किधर जा रहा है, क्या हालात आने वाले हैं। आखिर हुजूर यूं ही तो खबरें नहीं दी है, कोई आपकी हॉबी तो नहीं थी माज़अल्लाह, ये नबूवत का फंक्शन है जो आपने अदा किया, खबरें दी।
वेलकम बैक, आप सुने थे डॉक्टर स्वार अहमद को, ये कई साल पहले की उनकी एक तकरीर थी। हाफिज आकिफ सईद मेरे साथ मौजूद हैं। अजरत मुझे ये बताइएगा कि आपने भी सुना डॉक्टर साहब को, शाम और मशरक़ वस्ती में जो जारी इस वक्त जंग है और दाइश के हवाले से हमें बिलखसूस कुरान और हदीस से वो कौन से इशारे मिलते हैं जो इसको बताते हैं कि क्या होने वाला
है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाम के हवाले से अहादीस में ये बात आई है और उसमें कुछ मुस्बत पहलू आया है कि आखिरी दौर में जब जंगी होंगी तो शाम में ईमान होगा, अहले ईमान भी जो है वहाँ पर होंगे, लेकिन उसकी पूरी इंटरप्रिटेशन हमारे सामने नहीं है। लेकिन आखिरी दौर की जो आर्मगेडॉन अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, जिसका जिक्र जो है वो ईसाई किताबों में भी है, बाइबल में भी है, और हमारी मुस्लिम ट्रेडिशंस के अंदर अहादीस में मौजूद है, अलमलहमतुल उज़्मा, बहुत बड़ी जंग। अभी आपने वालिद साहब का ये क्लिप दिखाया है तो फरमाया करते थे कि बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें होंगी, और ये सारी सूरत हाल जो है इसका पस मंज़र ये है कि मुसलमानों ने अल्लाह के दीन से बेवफाई और गद्दारी की है। अल्लाह का दीन आज कहीं एक जगह भी नाफिज नहीं है। आपके इल्म में है کہ 56-57 اسلامی ملک ہیں، کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین پورے طور پر قائم نہیں ہے، ناٹ اے سنگل کنٹری۔ یہ اللہ کے دین سے
ناٹ ایون سعودی عربیہ۔
سعودی عربیہ کا معاملہ آپ کو معلوم ہے، ان کا بھی سارا معاشی نظام جو ہے وہ سود پر چل رہا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے،
تو
اور وہاں مونارکی ہے، بادشاہت ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو وہاں جو انسانوں کے حقوق جو دور خلافت راشدہ میں تھے وہاں پر نظر نہیں آتے، تو بہت سے پہلو سے۔ ہاں کچھ شرعی سزائیں ہیں جو نافذ کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے بھی بہرحال کچھ امن اور وہاں کی بہتری ہے، لیکن حقیقی معنی میں تو پورا نظام، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سودی نظام، اور جو سودی نظام جو شخص کرے گا سود، یا سودی نظام کسی ملک میں ہوگا تو اللہ اور رسول کی طرف سے تو اعلان جنگ ہے ان کے لیے۔ بہرحال یہ ایک پورا سلسلہ ہے کہ اس پورے علاقے میں اصل میں یہ اللہ کا عذاب ہوگا، لیکن ابھی جیسے آپ نے دیکھا یہود کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اور یہود استعمال کر رہے ہیں اس وقت عیسائیوں کو، عیسائی ورلڈ کو، امریکہ کو استعمال کر رہا ہے، اور وہ سب کو جھونک رہا ہے اس کے اندر، نیٹو کو جھونک رہا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 80 پرچم ہوں گے جو مسلمانوں کے خلاف آئیں گے لڑنے کے لیے، اور ہر پرچم کے نیچے 12,000 جو ہے وہ فوج ہوگی۔
تو ادھر تو سارے مسلمان ایک ساتھ ہو گئے ہیں جی، سعودی عربیہ میں ایک بڑی گرینڈ قسم کی آرمی بن رہی ہے،
ابھی بنے گی تو دیکھیں گے نا، ابھی تو فرسٹ ٹائم بات آئی ہے، ابھی تو انتشار ہی انتشار ہے، یہ کوئی اتحاد کی طرف بات آئی ہے، عملاً یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا یہ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے بڑے پیمانے پر عربوں کی ہلاکت ہے۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ امت مسلمہ میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں، ان کی زبان میں قرآن ہے لیکن انہوں نے اللہ کے دین سے بے وفائی اور غداری کی ہے، لہذا وہ سب سے بڑے مجرم ہیں اور سب سے بڑی سزا ان کو ملے گی۔ یہ بنی اسرائیل کے واقعات میں بھی آپ نے ابھی ایک حوالہ بھی دیا ہے ایک واقعے کا، قرآن مجید نے تفصیل سے بتایا ہے کہ جب انہوں نے بھی اللہ کے دین سے بے وفائی کی تھی، انہیں بھی دین عطا ہوا تھا، تورات ملی تھی، پورا نظام ملا تھا، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پورا نظام نافذ تھا، لیکن انہوں نے بھی جب دین سے غداری کی اور بے وفائی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر بڑے بڑے کوڑے برسائے ہیں۔ بخت نصر کا حملہ، یہ تقریباً 750 قبل مسیح میں تھا، اور اس میں جو ہے اس نے لاکھوں کو ہلاک کیا ہے اور باقی سب کو وہ کیپٹیوز بنا کر، اسیر بنا کر لے گیا بیبیلونیا، اور 150 سال تک بنی اسرائیل جو ہیں وہ کیپٹیویٹی میں رہے ہیں، قید میں رہے ہیں، اس کے بعد آزادی ملی۔ پھر ابھی بات آ رہی تھی کہ 70 میں پھر یروشلم جو ہے اس کی تباہی ہوئی ہے، پھر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ان کے یہودیوں کا قتل عام ہوا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں جو اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل ہوتی ہے، اور اس مسلمان قوم پر بھی جنہیں اللہ نے بہترین امت قرار دیا ہے، لیکن جب اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے تو اس کو بھی سزا ملنی ہے، اور اسی کا نقشہ بنتا ہے۔
اس وقت مصر، شام اور یمن
جی،
ان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے حوالے ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتے ہیں کہ یہ ہونا ہے مسلمان ممالک میں اس طرح سے قتل و غارت ہونا ہے؟
عربوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، اور خاص نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ہلاکت کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان تو اس سے بھی عرب ورڈ سے بہت دور تک ہیں، عربوں کا ذکر ہے۔ من اقتراب الساعة ہلاک العرب، اور اسی طریقے سے اور حدیث بھی ہے، من شر قد اقترب ویل للعرب، عربوں کے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہے، من شر قد اقترب، ایک ایسے فتنے سے کہ جو زیادہ دور نہیں ہے۔ تو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہلاکت ہوگی، اور یہ سزا اسی کی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اڑتا جائے گا اور نیچے اترنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، ڈیڈ باڈیز اتنی زیادہ ہوں گی، اور یہاں تک کہ وہ تھک کے گر جائے گا، مر جائے گا، لیکن اس کو جگہ نہیں ملے گی۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ ہر 100 میں سے 99 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے اس جنگ کے اندر۔ اور یہی بات جو ہے والد صاحب نے کہی تھی کہ اب تھرڈ ورلڈ وار جو ہے اس کا میدان یہی بن رہا ہے مشرق وسطی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام بڑی قوتیں جو ہیں اس میں انوالو ہیں، رشیا بھی انوالو ہے، امریکہ انوالو ہے، نیٹو انوالو ہے، اور اس کا میدان یہی بن رہا ہے۔ اب یہ یورپ کے میدان میں نہیں لڑی جائے گی تھرڈ ورلڈ وار، یہ اسی علاقے میں لڑی جائے گی، اور سارا جو ہے وہ اس کا نزلہ جو گرے گا وہ عربوں پر گرے گا۔
اچھا، جب میں یہ دیکھتا ہوں، آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو سکتا ہے، میں اس پہ تو نہیں میں سوالیہ نشان اٹھاؤں گا، کسی کے بھی مسلک پہ میرا وہ حق نہیں ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں جب بی بی زینب کے روزے کی بے حرمتی ہو رہی ہے، جب دیگر صحابہ کرام کے روزوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ٹینک ان کے اوپر چلائے جا رہی ہیں سیریا میں لے جا کے، اور کہا جا رہا ہے یعنی یہ آل ان دا نیم آف ریلیجن اور داعش یہ وہ، تو دکھ ہوتا ہے کہ آپ ایسے حرکات کیوں کریں جس سے کسی کے بھی یعنی اس کے احساسات مجروح ہوں۔
لقمان بھائی آپ کی بات صحیح ہے، داعش جو کچھ کر رہا ہے نا اس کی تو کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں نکلتی، وہ تو ایک تکفیری سوچ ہے، اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔
سو تکفیری بھی فتنہ ہے؟
نو ڈاؤٹ، یعنی جو جس سے
لیکن تکفیری تو آپ کے معذرت کے ساتھ سعودی عربیہ سے آتے ہیں۔
تکفیر